हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर यू इन लव विथ हिम? आरना हड़बड़ा कर, ये क्या कुछ भी बकवास कर कह रही है तू? नैना गंभीरता से, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अरु, एंड आई वॉन्ट योर आंसर। अत्यधिक गंभीरता के साथ, डू यू लव हिम अरु? नैना की बात सुनकर आरना का दिल तेजी से धड़क उठा। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन नैना आज जिद पर थी और आसानी से बात नहीं छोड़ने वाली थी। वो आरना के सामने आकर खड़ी हो गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आरना खुद को देखते हुए नैना से गहरी सांस लेते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है नैना जैसे तू सोच रही है। नैना, बेहतर होगा अगर ऐसा कुछ ना हो अरु, क्योंकि तुझे तड़पता और बर्बाद होता मैं हरगिज नहीं देख सकती। आरना, नैना का हाथ थामकर, मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा हुआ भी तो मैं सिवाय खुद को तकलीफ देने के और कुछ भी हासिल नहीं करूँगी। और इन सबसे अलग एक हकीकत ये भी है कि वो शख्स मेरे पापा की तकलीफ और परेशानी की वजह है, तो उसके लिए ऐसा चाहना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी दूर की बात है। इसलिए ती बिल्कुल फिकर मत कर मेरी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। नैना, आई होप सो कि ऐसा ही हो। अच्छा, ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि राहुल और पापा कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। राहुल भी यहाँ मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेवजह कुछ भी बात बिगड़े, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने से मना कर दिया। तू तो जानती है कि वो तेरी कितनी फिकर करता है। ठीक किया तूने। मेरा दोस्त, मेरा भाई, हर एक रिश्ता जिया है मैंने उसके साथ, और कभी सोचा नहीं था कि उससे मिलने या बात करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। नैना, आरना के कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी, देखना जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। नैना कमरे को देखते हुए, वैसे कुछ भी हो, भस्मासुर का टेस्ट और चॉइस काफी अच्छा है। बस अगर शक्ल और पर्सनालिटी के साथ उसके सड़ू जैसे बनाए हुए मुंह पर थोड़ी नरमी और मुस्कुराहट होती ना, तो बंदे का जवाब नहीं होता। लेकिन नहीं, उसे तो जैसे भस्मासुर बनने में ही अपनी शान नजर आती है। बस जब देखो तब पूरे टाइम बोरिया भर भर के घमंड और सड़ूपन से नहाया रहता है। अच्छा, तू छोड़ ना ये सब बातें, अपना बता कुछ। इसके बाद थोड़ी देर तक नैना आरना से बात करती रही। इधर दूसरी तरफ रिदांश की बात सुनकर अनिकेत सकते में आ गया था। अनिकेत अचंभे से, ये क्या कह रहा है रिदू? तू श्योर है कि ये वही है? रिदांश गुस्से से अनिकेत की तरफ पलटते हुए, तुझे लगता है कि कोई इंसान अपनी बर्बादी को कभी भूल सकता है? जिंदगी के एक नासूर बने हिस्से की यादें कभी धुंधला सकती हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव से, मैंने जब से होश संभाला तब से बस अपनी पूरी जिंदगी इस दिन के इंतजार में ही जी है, और अब इस मौके को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तब कमजोर था, लेकिन आज नहीं, और अगर मैं चाहूं तो इस किस्से को एक पल में खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये सजा बहुत ही आसान होगी जो मैं हरगिज नहीं चाहता। मैं उन्हें तिल तिल तड़पा तड़पा कर बरसों से अपने सीने में लगी इस आग को ठंडा करूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है रिदू, अगर ऐसा था और तू हकीकत जान चुका था तो फिर तूने उस लड़की से शादी ही क्यों की? क्योंकि वो लड़की मेरी। तभी रिदांश का फोन बजा। उसने फोन देखा, घर से था। नंबर देखकर उसने फोन पिक किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके एक्सप्रेशंस गुस्से के बदले फिक्र में बदल गए। वह बस पहुंचता हूँ कहकर जल्दी से फोन काट दिया। अनिकेत, क्या हुआ लिदू? तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? रिदांश परेशान होकर, वो माँ। दूसरी तरफ नैना और आरना अभी भी बातों में लगी थीं। नैना, अच्छा यहाँ वैसे कौन कौन रहता है? मिस्टर अग्निहोत्री, उनके एक भाई और दो बहनें। अच्छा, और इन लोगों के पेरेंट्स? प्रिशा ने बताया था कि उनके पापा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ है जो उनके साथ ही रहती है। मगर जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही मैंने उन्हें यहाँ नहीं देखा। पता नहीं, पूरा का पूरा खानदान ही अजीब लगता है मुझे। खैर चल, अब मैं निकलती हूँ, काफी लेट हो गया है, और वैसे मैं नहीं चाहती कि उस भस्मासुर से मेरा सामना हो और बेवजह मेरा पारा हाई हो, तो मैं निकलती हूँ फिर। ठीक है, लेकिन बहुत लेट हो गया है, तू अकेले नहीं जा सकती। और क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और तेरा घर भी यहाँ से दूर है, और इस वक्त तेरा अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तू ऐसा कर, राहुल को बुला ले, वह तुझे पिक कर लेगा।
नहीं अरु, राहुल को यहाँ बुलाना ठीक नहीं है, बेकार में ही बात बिगड़ेगी।
डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी।
इसके बाद आरना नैना को छोड़ने के लिए बाहर गई। आयुष पहले से ही गार्डन में बैठा था। उन दोनों को देखकर वह खड़ा हो गया।
आयुष, नैना से, जा रही हैं आप?
ये रास्ता अंदर की तरफ तो जा नहीं रहा,
आई थिंक ये रास्ता बाहर की तरफ ही जा रहा है,
तो जाहिर है कि जा ही रही हूँ।
आरना, बात बदलते हुए, आयुष जी, क्या कोई ड्राइवर नैना को घर तक छोड़ आएगा? वो क्या है ना, काफी लेट हो गया है और इसका ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है।
आयुष जी, भाभी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कोई भी ड्राइवर यहाँ मौजूद नहीं है।
आरना झिझकते हुए, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप, मेरा मतलब है कि बस आप किसी सेफ टैक्सी या गाड़ी तक इसे छोड़ दीजिए।
आरना, अरु, तू खामखा परेशान हो रही है, मैं मैनेज कर लूंगी।
ठीक है भाभी, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ाऊंगा।
नैना, कुढ़कर, क्यों ड्राइवर हो तुम, कुछ काम काम नहीं है तुम्हें?
आरना, नैना का हाथ दबाते हुए,
नैना, आयुष की तरफ देखकर, आई एम सॉरी, वो क्या है ना, बस इसे मजाक करने की आदत है।
नो, इट्स रियली ओके भाभी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है।
नैना आरना से आंखों ही आंखों में जाने के लिए मना करती है, लेकिन आरना भी आंखों ही आंखों में उसे उसकी एक न सुनने वाला लुक देती है। मजबूरन नैना को आरना की बात माननी पड़ती है।
आयुष, नैना की तरफ देखकर, अब चलें, मुझे जल्दी भी वापस आना है।
नैना खा जाने वाली नजरों से आयुष को देखते हुए,
हाँ, जैसे मैंने ही तो तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि चलो मेरे साथ।
आरना से गले मिलते हुए उसे बाय कहकर आयुष की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए, अब चलो या यहीं खड़े रहोगे।
इसके बाद नैना आयुष के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद आरना भी वापस घर के अंदर आ गई। जैसे ही आरना वापस अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, उसे सीढ़ियों के नीचे पीछे वाले हिस्से में किसी चीज के गिरने की एक तेज आवाज आई। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई भी मौजूद नहीं था। एक पल तक आरना वहीं खड़ी रही, लेकिन जब उसे उस तरफ से दोबारा आवाज आई तो वो उस दिशा में अपने कदम बढ़ाती है। कुछ ही देर में वो एक कमरे के सामने खड़ी थी। उसे याद आया कि सुबह घर की सफाई करते वक्त समांथा ने उसे इस तरफ आने से साफ मना किया था। यही सोचकर आरना अपने कदम वापस लेने को हुई कि एक बार फिर कमरे से आती आवाज़ ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कुछ सोचने के बाद उसने कमरे के दरवाजे की नॉब पर लगी चाबी को घुमा दिया और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। जैसे ही वो दरवाज़ा आधा खुला, एक जोरदार झटके के साथ कोई आरना को अपनी तरफ खींच लेता है। इस सब के महज एक ही सेकंड बाद एक भारी भरकम वास उस दरवाजे से बाहर आता है। अगर एक पल और आरना वहां खड़ी होती तो वो वास सीधा आरना के सर में ही आकर लगता। अचानक हुए इस वाक्चे और वास के टूटने की आवाज से आरना शॉक्ड होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे कुछ पल तक ये भी होश नहीं था कि वो इस वक्त किसकी बाहों में है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ और हमेशा की तरह अभी भी रिदांश से आती एक अलग और मनमोहक खुशबू का एहसास उसे हुआ, तो वो एक झटके से रिदांश से खुद को दूर कर लेती है। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी प्रतिक्रिया देता, एक अनजानी आवाज़ आरना के कानों में पड़ती है। रिदु, तू आ गया?
रिदांश आरना के पीछे की तरफ बढ़ते हुए,
हाँ, मैं आ गया माँ।
आरना भी अब अपने पीछे की तरफ मुड़ती है और रिदांश के साथ मौजूद उस औरत को देखती है जिसे वो अपनी माँ कह रहा था। उस औरत के एक्सप्रेशन और हालत देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कुछ अलग है, या यूं कह सकते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग और रवैया और जिद बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था। रिदांश उसे समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था।